نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم آج ایک سلسلے کا آغاز کریں گے. یہ اصل میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی ایک ناممکن سی کوشش ہے. قرآن کی جتنی بھی تعلیمات دی جاتی ہیں وہ ساری اسی پہ ہی ہیں کہ اللہ پوری کوشش کی ہے, حق ادا نہیں کیا, اس دفعہ اتنا ہی قبول کر لیں, اگلی دفعہ اس سے بہتر کروں گے. یاد رکھیے گا, زندگی میں اگر ایک حرص رکھنی ہے تو وہ نیکیوں کی حرص رکھیں. ہم اس وقت آپ کے ساتھ دہرائی کریں گے. قرآن کے بڑے خوبصورت رنگ ہیں, تو آج آپ سب کے لیے اس موقع پہ اللہ کی توفیق سے ایک جو پریزنٹیشن کی روشنی میں کریں گے. مقصد صرف یہ ہے اس وقت یہ سارا کچھ کرنے کا اور دکھانے کا کہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ اس سفر میں آپ کو کیا ملا ہے, کتنے ڈوز ہیں اور کتنے ڈونٹس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے برکت دے. قرآن پاک اللہ کا انعام ہے, ایک تحفہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسانیت پہ جو سب سے بڑا احسان کیا اور اپنے رحمان ہونے کا ثبوت دیا وہ ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. تو قرآن کا معلم اول اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے, سمجھنے اور اس کے بعد اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آپ کی میری دنیا میں آمد کا مقصد اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا کر دوسروں تک پہنچانا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر بھٹک گئے, لیکن انشاءاللہ تعالی قرآن سیکھنے کا یہ سفر آپ کو مجھے انشاءاللہ تعالی اس قابل کر دے گا کہ ہمارے دل میں اس چیز کی بھی طلب اور تڑپ بڑھتی جائے گی کہ ہم نے اپنے پیاروں کو بھی اس سفر میں ساتھ رکھنا ہے. تو قرآن پاک کیا ہے؟ دلوں کو بدلتا ہے. عمر آئے تھے نبی کے دشمن بن گئے اور اپنا دل دماغ سب کچھ دے کر چلے گئے. جان لینے آئے تھے, سب کچھ دے کر چلے گئے. آپ نے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی دیکھی ہوگی, اور اس تبدیلی میں آپ دیکھیں گے 90% وجہ قرآن بنتی ہے. کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا. پارا ون سلائڈ دیکھیے گا. الف لام میم ہم اس پارے کو کہتے ہیں. ایک دعا مانگتا ہے انسان سورت فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. یہ پارا اس کا جواب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. پارے کے بہت سارے اینگل ہیں, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو حسد اس میں نمایاں دکھتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کے اس سفر میں سب سے پہلے سورت فاتحہ کھلتی ہے, اور مانگے جانے والی دعاؤں میں سب سے زیادہ کثرت سے مانگی ہوئی چیز اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے ڈے ون پہ سکھا دیا, نعمتیں ساری بڑی ہیں, مال, اولاد, گھر, حسن, جوانی, رشتے, شادیاں, گاڑیاں, فون, سب بہت بڑی نعمت ہیں. لیکن شرط ایک ہے, یہ ساری نعمتیں مشروط ہیں ہدایت کے ساتھ. ہدایت کی نعمت کے ساتھ اولاد ملے تو نعمت, ہدایت کے بغیر اولاد ملی تو آزمائش. ہدایت کی نعمت کے ساتھ اگر مال دولت ملے تو نعمت. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ اس مال کو اللہ کے رستوں میں لگاتے ہیں, لیکن ہدایت کے بغیر مال بنی تو بتر و ریا اور دکھاوا بنے گا, اور نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں جو آج اکثریت کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پارے کے آغاز میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدایت چاہیے تو تمہیں ہدایت کے لیے تڑپنا پڑے گا. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ तकवा क्या है? खुद को बदलने की ख्वाहिश। आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। मुत्तकी वो नहीं होता जिसकी दाढ़ी निकल आती है, मुत्तकी वो नहीं होता जो सर से पांव तक निकाब में आ जाए। ये तो बहुत छोटे इजहार है, ये तो मज़ाहिरे तकवा है, असल तकवा ये नहीं है। असल ये है कि मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, थक गई हूँ, भटक गई हूँ, मैंने बहुत दुख सहे अल्लाह। मैंने इस दुनिया को बहुत खुश करना चाहा, कोई हुआ नहीं। मैंने इस दुनिया को पाना चाहा, ये मुझे मिल के भी मिली नहीं है। मुझे अंदर का सुकून और ख़ुशी चाहिए, तो उस पे अल्लाह ताला ये किताब हिदायत खुलवाते हैं। और इस बारे में आप देखिए कि आगाज़ में ही तीन गिरोहों का तذکرہ किया जाता है, जिसमें मुत्तकीन, काफरीन और नाम लिए बग़ैर वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ने इधर मुनाफिक नहीं कहा, क्योंकि सफ़र के आगाज़ में क्या नाम लिया जाए। ये नाम इस्तेमाल हुआ लेकिन आगे जाके, लेकिन बता दिया कि इनका असल मसला इत्तबाए रसूल है, क्योंकि आमन्ना बिल्ला भी है व बिल यौमिल आखिर भी है, और ईमान की तीसरी जुज और वो क्या है, ये आमन तो बिर रसूल नहीं है। हर दौर के मुनाफिक का मसला रसूल की इत्तबा होती है। इसके लिए अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें इन तीन लोगों के साथ मुलाकात कराने के फौरन ही बाद या अय्युहन्नासु बुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम इस आयत में एक हुक्म दिया। पहला हुक्म तरतीब के एतबार से कुरान पाक का पहला डूज में से पहला डू सो बुदु रब्बकुम, रब के बन जाओ, बंदगी यही है, या का नाबुदु। ये है असल में इस कुरान का क्लाइमैक्स, रब के बंदे बनो। 17 बार आप और मैं कहते हैं या का नाबुदु व या का नस्ताइन। याद रखिए, ये बंदगी की डोरियां जिस दिन कटेंगी उस दिन बंदा रब की अदालत में खड़ा होगा। सारी ज़िंदगी जिस रिश्ते को जोड़ने का हुक्म दिया जाता है वो अल्लाह और बंदे का रिश्ता, और उसके लिए दिन में 17 बार ये नमाज में दुआएं पढ़ाई जाती हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम इसके ऊपर यकीन तो रखें। फिर उसके बाद फासिकीन से तारुफ़ करवाया जाता है, चौथा गिरोह, जिनको शर्म ही नहीं आती गुनाह करते हुए। मुनाफिक तो फिर भी ज़रा सा शर्म के साथ गुनाह करते हैं ना, दिल का रोगी होता है, ज़ाहिर से अच्छा बनता है, पर फासिक तो कहते आओ देखो हम तुम्हें डंके की चोट पे बताते हैं हम जानी हैं, हम फासिक हैं। जो ही इन चारों का ताल्लुक पेश कर दिया तो अल्लाह सुबहाना तारा ने पहले इंसान की कहानी वही क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हर बंदे को अपना असल सुनने को शौक़ होता है। हम भी कभी बचपन में अपनी नानी और दादियों से पूछते होंगे कि नानी फिर क्या हुआ, फिर हम कैसे हुए, मैं कब पैदा हुई, क्या हुआ। इंसान को अपने माजी के बारे में जानने का बहुत शौक़ होता है, ख़ास तौर पे वो चीज़ जिसके ऊपर आपका अपना हाथ ना हो। उस वक्त अल्लाह ताला फिर हमें इन पहले इंसान की कहानी सुनाते हैं, और वो आदम अलैहिस्सलाम। उसी कहानी में हसद की पहली कहानी इबलीस। याद रखिए, इंसान इस दुनिया में अपना हासिद साथ लेकर आया, इंसान इस दुनिया में अपना दुश्मन साथ लेकर आया। बाद दुकुम लिबादिन अदुव, बास के लिए दुश्मन होंगे। ये दुनिया जन्नत नहीं है, टेंशन फ्री नहीं है, ये दुनिया गमों से पाक नहीं हो सकती। इसका टेक्सचर ही गम है, दुख और तकलीफ और फ्रिक्शन। क्योंकि जब दुश्मन सर पे लगा और वो चैलेंज करके आया है कि मैं इसकी नस्लों को खा जाऊंगा और इनके आगे पीछे लगूंगा, तो हसद पहले इबलीस का इस बारे में। उसके बाद 10 रुकू, तकरीबन इस पारे का 90% हिस्सा बनी इसराइल से मुतल्लिक है। या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमत अलैकुम। इंसान परेशान होने लगता है कभी कभी कि मैंने तो कुरान अपनी हिदायत के लिए खोलना था, तो ये क्या हो गया? इसमें तो आते ही बनी इसराइल और यहूदियत की बातें, उनकी कहानियाँ। लेकिन अल्लाह ने हसद की ये एक चलती फिरती तस्वीर जो मदीना की गलियों में अल्लाह के नबी सल्लम के इर्द गिर्द फैले हुए लोगों में मौजूद था, और दो कौमों का हसद था, दो सगे सौतेले भाइयों का हसद था, जिसने वो नेमत जो मांग रहे थे, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से उसको ठुकरा दिया कि ये हमारे गिरोह से नहीं है। तासुब की दीवारें खड़ी कर ली। अल्लाह ताला ने इसमें हमें उनकी ये सारी चीज़ें कर करा के आखिर में एक रंग दिया, सिबगत अल्लाही वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा। अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका है। अगर आप इस पारे के अहम नकात को देखें ना, तो इंसानियत के तीन बुनियादी गिरोह पहले ही दो रुकू में, फिर उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी अल्लाह के अहकामात को मानने में है। बिल्कुल ऐन पारे के वस्त में आयत है, अफतूमिनून बिबादिल किताबी वतकफुरून बिबाद। क्या तुम किताब की बाज़ बातों पर तो ईमान लाते हो और बाज़ को छोड़ देते हो। फमा जजा मिनकुम, फिर इसके अलावा और तुम्हारी जजा हो क्या सकती है। यानी डांटे ना, तो इतनी बड़ी डांट है इस पारे के अंदर के जिसको कहते हैं ना सीधे हो जाओ। ये जो सजाएं मुसलमानों तुम्हें आज के दौर में मिल रही हैं, ये थोड़ी हैं। तुमने दीन को पिक एंड चूज बना लिया, टाई एंड डाई मुस्लिम, रंग बिरंगे मुस्लिम, अपनी मर्जी का दीन। किसी काउंटर पे खड़े आइसक्रीम के फ्लेवर चूज़ करते हो, ये दे दो, ये इतना दे दो, आई डोंट लाइक दिस, तुम्हें इस्लाम दीन ये लगा तो गलत है। अगर कोई कौम ये करेगी तो उसका नसीब क्या है, दुनिया और आखरत की रसवाई। फमा जजाओ मिनकुम, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता दिखता है, इसको देखकर बाज़ दफ़ा हमारे बच्चे भी परेशान होते हैं। तो जवाब आपको बिल्कुल पारे के बीच में। फिर अल्लाह ताला ने इब्लीस का किस्सा और आदम की तौबा का तस्करा करके बता दिया कि इब्लीस चाहेगा मुसलमानों को बहकाने की, इंसानों को भी बहकाने की, बट अगर आदम की तरह तौबा का ताल्लुक अल्लाह से जोड़े रखा, अल्लाह ताला के हुक्म से खैर होगी। और इस तरह फिर पारे के आखिर में एक किरदार जिसके लिए आज यहाँ बैठकर अपने दिल के अंदर डूब के दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे ऐसा कर दे, और वो कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उनका तारुफ किससे अल्लाह ने करवाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आते ही एक जुमला तो ज़हन में आता है, इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु रब्बिल आलमीन। जब उसने अपने रब, जब उसके रब ने उसको कहा कि मुस्लिम हो जा, मती हो जा, सरेंडर कर दे, पहले ही तैयार थे, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई प्रोज एंड कॉन नहीं तोले। ओके लेट मी थिंक, अक्ल के चौकीदार को नहीं बुलाया कि अगर आज के दौर में इस हुक्म पे अमल कर लूँ तो क्या होगा, सीक्वेंसेस क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, मेरे हस्बैंड दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे, मेरे बच्चों को माँ नापसंद तो नहीं हो जाएगी, हम सारी दुनिया की पहले NOC मांगते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मैं करूँगी पर्दा, शर्त जाए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई ऑब्जेक्ट ना करे मेरे हिजाब को, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, दिल बड़ा चाहता है, बस शर्त यह है कि देखिए खबरदार कोई अगर मेरे से नाराज़ हुआ, मैं आंसू नहीं देख सकती आंखों में, बिकॉज आई एम सो सेंसिटिव। तो सेंसिटिव लोग जो हैं वो दीन का काम और अल्लाह के हुक्मों पे अमल नहीं करते। अल्लाह के हुक्मों पे अमल करने वाला बड़ा बहादुर होता है, इब्राहीम की तरह। सारी बिरादरी कौम के बीच में अकेला इब्राहीम, और अल्लाह ने मेयार बना दिया इब्राहीम का को मेरे आपके लिए, कबाइज़ बतला इब्राहीम। पहली आयत है, जाके खोल के देख लीजिए, कुरान में लफ्ज़ इब्राहीम के नाम से इब्तला का जिक्र है, क्योंकि बग़ैर मुबतला किए इमामत नहीं मिलती। आजमाइशों, परेशानियों, बीमारियों, दुखों, तकलीफ़ों में से किसी रास्ते से गुजार के अगर अल्लाह आपको इब्राहीम की तरह मतीउल्लाह कर दे तो फ़ायदे का सौदा। तो क्या पता चला पहले बारे में? आपने मैंने इंशाअल्लाह ताला सच्चे दिल से हिदायत की दुआ करनी है, और पूरे यकीन और आफियत के साथ हमने बनने की कोशिश करनी है। आज यहाँ बैठे सबको भूल जाए, किसी के लफ्ज़ों को भी ना इतना सुने, एक सेकंड, मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ, कोई बात नहीं, वक्त तो सारा आप ही का है, आपके लिए तो यहाँ बैठे हैं हम। आज यहाँ से सिराते मुस्तकीम की दुआ मांग के निकलना है, केह दिन सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ करके बैठिए। अल्लाह ने आपको मुझे ऐसे ही नहीं चुना, नबी की उम्मती हैं, कोई मजाक है? वो उम्मती जिसके लिए लोगों ने दुआ की, नबियों की दुआ थी कि अल्लाह हमें उम्मत मोहम्मदिया का एक आम फ़र्द बना दे, हम इस पर ज़्यादा खुश हैं, बेशक नबूवत ना देता। आपकी मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई, आपकी मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई, क्या आज हम इस फंदे को अपने लिए बोझ समझ के उतार फेंकेंगे? तो इस किताब को पढ़ के हिदायत ना मिली तो तुफ है। नबी का उम्मती बन के अगर जहन्नुम में गिरा दिए गए तो अफसोस दर अफसोस। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मसार हो गए तो किसी जोगे नहीं रहे हम। अल्लामा इकबाल के फ़ारसी के अशआर हैं, कहते हैं कि अल्लाह तू बेनियाज है, तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर तू मेरा हिसाब ना ले, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तू बेनियाज है, इतनी बड़ी हस्ती, तेरे इतने बंदे, तो तू मेरा हिसाब ना लेगा, तेरा क्या जाता है, ना ले। लेकिन अगर तूने हिसाब लेना ही है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा के लेना, मुझे क़यामत के दिन मेरे प्यारे नबी के सामने शर्मिंदा ना करना। बात वाज़ेह, जितना ज़्यादा आप और मैं आपको अपने आप को उस अदालत में खड़ा करेंगे उतना ज़्यादा आज दुनिया में कुछ कर जाएंगे और उस दिन की रसवाई से बच जाएंगे। उसके बाद असल दूसरी बात शुरू होती है, दूसरे पारे में। ज़रा सा देखिएगा पारा नंबर टू, बल्कि मैं जो 3 सेकंड खामोश रहना चाहिए, आप अल्लाह से दुआएं करें हिदायत, दिल से हसद निकाल दें, हर नेगेटिव जज्बा निकाल दें। मैं भी अपने लिए करती हूँ। और आज के बाद जिस नमाज में भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ेंगे, चंद सेकंड ज़रूर दीजिएगा उसको इस बात के लिए कि अल्लाह आपकी उस दुआ पे लब्बैक कह दे, कुन कह दे। दूसरा पारा है असल में सूरत बकरा का सेकंड हाफ। अगर आप इसका मौजू देखें तो सब्र है, लेकिन ये कौन सा सब्र है? सब्र महज नहीं है, ये राह हक का सब्र है। सूरत बकरा को सूरतुल उम्मतैन भी कहते हैं, दो उम्मतों की सूरत। पहला पारा, पहली उम्मत, उम्मते मुस्लिमा से पहले लोग, यानी माजी के मुसलमान, यानी यहूद बनी इसराइल, उन्हीं की बातें कर करके 3 दफ़ा उनको नेमतों की तस्कीर करके उनके हाथ से इमामत का मंसब छीना, बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट। कब तक मुझे आप इस कुर्सी पे रखेंगे अगर मैं इस कुर्सी का हक अदा नहीं करूँगी? ये तो आपको मन्नतें माननी पड़ती हैं कि अल्लाह ने एक ही का अगर कोई काम दे दिया तो अब छीनना ना, अल्लाह मुझसे ही लेना, किसी और को मेरी जगह पे ना बिठाना, इसकी हिरस करनी चाहिए। जब बनी इसराइल ने वो काम ना किया जो उनको दिया गया था, तो आप पूछ लीजिए मुझसे कि क्या काम था? अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। पहले ये काम बनी इसराइल को मिला था, अल्लाह ने नबियों की फ़ौज भेजी, हर नेमत दी, तभी तो बार बार तस्कीरे नेमत है या बनी इसराइल अस्करू। लेकिन उनके मजहबी रहनुमा कुछ बीमारियों का शिकार हो गए, जिसमें हुब्बे जाह, हुब्बे माल, जर परस्ती, तासुब और अपनी ज़ात के लिए सेंसिटिव होना। जब बड़े और लीडर्स और मुंतजमीन इस तरह के हो जाते हैं ना, तो याद रखिए छोटों का हक मारा जाता है, फिर उम्मत भी वैसी होती है। नबी सल्लम जब मदीना में भेजे गए तो उस वक़्त उम्मीद क्या थी कि वह अल्लाह के नबी को लब्बैक कहते, हाथ उठा बढ़ाते, गले से लगाते और मिलजुल कर इंसानियत की इसलाह करते, लेकिन वो पड़ गए तेर मेर में। अल्लाह ने आखिर उनको हटाया और उम्मत मुस्लिमा को कहा, सयकूलु सुफहा मिनन्नासी मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। क़िबले की तब्दीली का हुक्म आ गया। वो तब्दीली क़िबला क्या थी असल में? जैसे एक वज़ीर आज़म को हटाकर उनकी जगह दूसरा वज़ीर आज़म आना और सेरेमनी ऐसी हुई कि जिसमें हलफ बरदारी है। दूसरा पूरा पारा आज के मौजूदा मुसलमान जो आप और मैं उनके मुतल्लिक है। आयते बिर के अंदर अल्लाह ने बात शुरू कर दी कि नेकी कुछ चंद छोटे छोटे रिचुअल्स का नाम नहीं है। लैसल बिर्रान तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकी वल मग़रिबी। तुम छोटी छोटी चीज़ों को नेकियां बनाए बैठे हो, नट शेल में घूमते हो, तुम इतने ज़्यादा छोटी सोच के साथ करते हो कि बस तुम समझते हो कि 5 नमाजें पढ़ ली तो मैं बख्शा जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। फिर उस पर एग्ज़ाम में बिर बयान कर दी, इस पारे का जो क्लाइमैक्स है वो क्या है, वो कजाली का जाल नाक उम्मतम वसतल्ली तकून शुहदा लन्नास। और पारे में जो दुआ सिखाई गई है, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल क़ौमिल काफ़िरीन। और जो खुशखबरी है, इन्नल्लाहा माल साबरीन, सब्र सब्र सब्र। और इस पारे में सब्र है बीबी हाजरा का। एक बूढ़ी औरत बुढ़ापे के बच्चे को लेकर एक ऐसी जगह में जिसको अल्लाह खुद कहता है गैर ज़ी ज़रइन, सूरह इब्राहिम में आता है। इब्राहिम कहते हैं अल्लाह मैंने तेरे लिए अपने बीवी बच्चे को एक वीरान जगह पे छोड़ दिया। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, सिर्फ समझने के लिए, नबी तो सोचते भी नहीं थे कि अल्लाह तेरा घर आबाद करने के लिए अपने घर को वीरान कर दिया। आज हम में से बहुत सारे लोगों का बड़ा मसला घर है, याद रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको दुखी नहीं करना चाहती, हल्की हल्की बातें ही रहे तो अच्छी होती हैं, लेकिन करूँ क्या, बात सच्ची है। आज उम्मत मुस्लिमा अपने घरों में खो गई, अपने बच्चों में खो गई, बीवी में खो गई, शोहर में खो गई, रोटी रोज़ी खाना पीना बच्चे शादी रिश्ते ये किबला बन गया। इसलिए फिर उसमें आप जैसे चंद लोग जब उठते हैं और किताब पकड़ते हैं तो आवाज़ें उठती हैं, सयकुलु सुफा मिन नासी मा वल्लाहुम, क्या हो गया, क्या हुआ। याद रखिए, जैसे तब किबला बदला था और आवाज़ें उठी थी, आज जब आपका किबला बदलेगा आपके ऊपर भी आवाज़ें उठेंगी, और बदली होंगी, उठी होंगी। अब तो ठंडा हो गया होगा जोश। याद कीजिए जब नया नया सफ़र था, आप कहते हैं लोग फूलों के बके पेश करेंगे, वो कुरान की साफ मुसाफिर बन गई, वो इतना अच्छा काम करके आई हो, आज इतनी आयतें याद करके घर जाते ही डांट पड़ती हैं, रोटी पकाओ काम नहीं है, दोपहर का काम खाना ख़त्म हो गया, घर गंदा, ये वो। तो सब्र करना है, सब्र महज। और दो किबले बता, किबले की तब्दीली से ये बता दिया, अगर कुरान पढ़कर तब्दीली नहीं आई तो माजरत के साथ फिर कुरान पढ़ा ही नहीं है। आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, स्पेशली सबीलुल जन्ना के साथी, मेरा किबला कितना बदला है। अगर आपका कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं बिगड़ा इस कुरान को पढ़ के, तो माजरत के साथ आपको ठीक नहीं पढ़ाया गया, कहीं और जाके पढ़िए। अगर आप टस से मस नहीं हुए, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आई, कोई अंदर तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई अंदर मार्फत नहीं हुई, कोई बाहर लोगों को अच्छी बात नहीं दिखी, आपके मामलात नहीं अच्छे हुए, तो इसका मतलब ये दवा ठीक नहीं या देने वाले ही ठीक नहीं है। वो कुरान कुरान ही नहीं है जो आपके मेरे अमल पे चोट ना डाले। इस पे फिक्र कीजिए, और ज़िम्मेदारी है उम्मत वसत बनने की। अगर मैंने आपने आज टूडे अपनी ये हैसियत समझ ली, मेरा मतलब ये कि अगर पहले नहीं भी पता थी तो इट्स ओके, आज से शुरू कीजिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद बच्चे पालकर उनकी शादियां करके उनके बच्चों को खिलाना नहीं है। अगर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का ये मकसद होता तो आप भी बैठते फातिमा के बच्चों को खिलाते पिलाते, और हर जिम्मेदारी से फारिग, क्या करूँ बच्चे हैं क्या करूँ। हम पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं, फिर हम अपने बच्चों के बच्चों को खिलाते हैं, पहले अपने बच्चों की बेबी सिटिंग करते हैं, फिर बच्चों के बच्चों की भी। क्यों, खैरियत होती कि बहू किधर, वो जॉब करती हैं, ये नवासी मेरे पास होती है ना, मैं करूँ क्यों भाई बेटी, वो जॉब करती है, ये प्रॉब्लम है। देखिए नानियों दादियों से माजरत के साथ माजरत कर लीजिए, जो जॉब करते हैं इंशाल्लाह वो अपने बच्चों की बेबी सिटिंग अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, नानी दादी तरबियत करे, मैं ये नहीं कहती आप बच्चों को छोड़ दें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन उस रिस्क से मौत अच्छी आती हो जिससे परवाज में कोताही। अंदर फफोले की तरह ये दर्द है आज उम्मत का कि हमने दीन को फालतू खाते में रखा हुआ है। फ्री टाइम चले जाएंगे, ओ आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, नाउ आई गॉट द जॉब सो आई हैव टू गो बैक। आज जितने आप लोग हैं आपसे इससे कई गुना ज़्यादा लोग होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में बहुत कम लोग झड़े हैं, ये मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा फिजिबल कोर्स था, अल्लाह आपको ले आया इधर तक, अल्लाह आगे भी चलता रखे। अमूमन लोग झड़ जाते हैं, कई सौ लोगों का दाखिला होता है और एंड पे 150 लोग फारिग होते हैं, आम तौर पे यही रेशो है। तो आपने मैंने इस पारे को पढ़कर एक दुआ करनी है, मैं चंद सेकंड रुकूंगी, आप अपने लिए दुआ करें। ऐ अल्लाह मुझे शहादत हक की गवाहियों के लिए चुन ले। बंदे मोमिन जिंदगी भर जिंदगी भर दुहाई देता, पुकारता रोता है कि अल्लाह मैं तेरी बन गई, अब मेरे ज़रिए से दूसरों को भी अपना बना ले, अपने से जोड़ दे। और फिर एक दिन अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है। वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवाता। तो एक दुआ मांगिए कि अल्लाह इस ज़िंदगी में अपने रास्ते का काम ले और मौत शहादत की दे। आप कहेंगे शहादत की मौत के लिए तो फिर हमें मैदान जंग में जाना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है। इल्म के साथ जुड़े रहेंगे, अल्लाह जहाँ मारेगा शहादत की मौत होगी। और आज ये सबक पढ़ाने की ज़रूरत है उम्मतों को। जब कौमें अमर बिल मारूफ और नहीं निल मुनकर छोड़ती हैं तो उससे वही होता है जो आज हो रहा है। अल्लाह आपकी मेरी मदद करे। दुआ मांगे अपने लिए, और एक दुआ मांगना ना भूलिएगा। उदखुलु फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह मुझे इस्लाम में पूरा दाखिल होने की तौफीक दे। पहले पारे में क्या जुमला था, फ़तूमिनून बिबातिल किताब व तकफुरून बिबात, हाफ एंड हाफ, 50-50, दीन भी रखो दुनिया भी रखो, अपनी टर्म्स है। चलिए, और इस पारे में है उदखुलु फिस्सिल्मि काफ़ा। अब हम तीसरे पारे पे चलते हैं। तीसरा पारा, अगर आप कह लीजिए सूरत बकरा का इख्तिताम, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसमें सबसे पहले तिलकर रसूल, रसूलों का मिशन, शख्सियात में ना खो जाओ, पर्सनैलिटी वर्शिप ना करो, मकसद से काम जुड़ो, लोगों में मत खो जाओ। फिर उसके बाद आखिरी आयत कुरान की तरतीब नज़ूल के अतबार से रिवायत में आती है कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई खुल्लत और कोई दोस्तियां नहीं होंगी, खर्च करो उससे पहले कि वो दिन आ जाए। और उसके बाद आयतुल कुर्सी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा, जिसमें मारफत रब्बी है, 25 नाम और सिफात हैं, नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स 25 के आलमोस्ट, 10 जुमले हैं एक आयत में, अल्लाह ला इलाहा इल्ला में। दिल के ऊपर अल्लाह की बड़ाई को ऐसे रासिख कर दिया जाता है कि बस इधर उधर ना देखना। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो जाता है। और उसके बाद वहाँ से लेकर ला इकराह फिद दीन और माल के खर्च करने की बातें तकरीबन 5-6 रुकू तक चलती हैं। खर्च करने की हर मुमकिन सूरत वहाँ बयान है। सदका खिरात, अल्लाह के रास्ते में फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन को प्रमोट करने पे खर्च करो, दे के ज़ाया ना करो, ताने ना दो, इल्ज़ाम ना दो। फसल में अगर कीड़ा पड़ जाए तो भी फसल बेकार होगी, अगर सुंडी पड़ जाए तो भी बेकार होगी, तो दिखावे रियाकारियों से ज़ाया ना करो। और फिर अगर सदका खैरात उम्मत खोल दे तो दुनिया से गुर्बत का खात्मा तो होगा, और साथ ही फिर उसमें कर्ज की बातें, कर्ज का लेन देन जायज़ है, बिला वजह ख्वाहिशों के कर्जे तो इस्लाम में थे ही नहीं, ये तो आज के मुसलमानों का शौक हो गया। पहले ख्वाहिशात के नाम पे कर्ज लेंगे, फिर सवाल करते हैं कर्ज जिस पे हो उस पे तो ज़कात माफ़ होती है ना, तो फिर मैं ज़कात तो ना दूँ। फिर उससे अगला स्टेप क्या होगा, मैं अपनी ज़कात खुद को दे लूँ क्योंकि मेरा घर कर्ज पे है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कहते हैं कि अंधा बांटे शरीनी बार बार अपनों को, हमारा आज ये हाल हो गया। पांच उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। हम दीन का हर वो हुक्म लेना चाहते हैं जो हमें फेवर करे, हम अपनी मर्जी का दीन चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम कर दे। फिर खर्च की बदतरीन सूरत सूद, आज के दौर का नासूर, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आजकल ना गुजीर है, आज के दौर में सूद के बगैर गुजारा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो खोल खोल के बता दिया कि आज और कल का दौर फ़र्क नहीं है, वही दीन कल था वही दीन आज है। और आज उम्मत को जो जर्म्स चिमटे हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा जर्म इंटरेस्ट का है। और उसके बाद फिर ना दिल माने अल्लाह की बात सुन के मानने को, तो लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ध, सूरह बकरा की आखिरी आयत है। कभी जहाज़ की खिड़की से एक घंटे का सफ़र करो देखो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि इस आयत का मतलब क्या है। तुम छोटी छोटी चीज़ों पर रोते हो, अल्लाह के पास तो ख़जाने हैं, और इस तरह सूरत बकरा एक बहुत प्यारी दुआ पे ख़त्म होती है कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, दूसरे पारे में भी था और इधर क्या था कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना, कमी कोताहियाँ याद आ जाती हैं। सूरह बकरा तक पहुँचने तक स्टूडेंट गल चुका होता है, पूरे यकीन से कह सकती हूँ, आपका मुझे नहीं पता। अंदर से वो जैसे दाल गलनी शुरू हो चुकी होती है, बाहर उसका टेस्ट चाहे बाद में आए, क्योंकि 1,000 हुक्म है सूरह बकरा में और 1,000 मना चीज़ें हैं। और इस तरह से जो ही सूरत बकरा पूरी हुई और इसमें अल्लाह के रास्ते में खर्च के साथ साथ बुखल को भी खोल दिया, बखीली कितनी है, अपनी ज़ात पे खर्च करते हुए कहते हैं कमाते किस लिए हैं और कब खर्च करेंगे, बच्चों की शादियां, बच्चों की खुशियां, किसी के माल का सबसे बड़ा एक्सपोजर देखना है तो शादियों पे देख लीजिए, फिर उसके बाद घर बनाने पे देख लीजिए, फिर गैजेट्स पे देखिए, और जब अल्लाह के रास्ते की बात हो तो कहते हैं अच्छा नहीं मैंने भी हिस्सा डालना, वो 5, 6, 10 का नोट डाले, मेरा हिस्सा डाल दीजिएगा वहाँ। अल्लाह कहते हिस्सा डालना नहीं है, हिस्सा बनना है। एक जुमला बोलती हैं इस बारे पे, क्योंकि इसमें बहुत इन्फाक फी सबीलिल्लाह, आज उम्मत के पौधे पे बहार क्यों नहीं है, क्योंकि उम्मत का माल नहीं लग रहा अल्लाह के दीन पे। आप अपने पे भी खर्च करें ना, और उतना ही अल्लाह के रास्ते में कर दें तो बच जाएंगे। एक चेक आपने 1,000 पाउंड का काटा, आपका सोफा आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, 1,100 का डाल दीजिए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह आपको बचा लेगा इंशाल्लाह। मसला पलटता कब है कि इधर 1,000 नहीं 10,000 का भी ठीक है और उधर 50, 100, 100 को हिस्सा देना, हिस्सा देना। क्या करेंगे आप हिस्सा देकर, हिस्सा बनिए। खर्च करते वक्त दिल में बुखल ना हो, ये सूरत बकरा सिखाती है। और साथ ही सूरत आले इमरान शुरू होती है, वहाँ तो एक और ही बुखल है, और वो क्या है, सूरह आले इमरान क्या है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम की मांगी हुई दुआ का दूसरा जवाब। और वो दूसरा जवाब क्या है, उधर बनी इसराइल थे तो इधर नसारा है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। इस सूरत के बिल्कुल आगाज़ में तकरीबन इब्तदाई 2-3 रुकू नसारा को असल दीन सिखाया गया, क्रिश्चियनिटी है क्या, ईसा कौन थे, कैसे अल्लाह ने उनको एक कुमारी मरियम के बतन से पैदा किया, और वो सारी कहानी। और पहले पारे में हज़रत इब्राहीम और उनकी बीवी, पहले पारे में इब्राहीम का जिक्र था, दूसरे पारे में बीवी हाजरा का जिक्र था कुर्बानियों में, इस तीसरे पारे में उम्मे मरियम। वइस क़ालत इमरातु इमराना, जब इमरान की बीवी ने कहा इन्नी नज़रतु लक माफी बतनी महर्रा, ए मालिक मैंने मन्नत मान ली है उस चीज़ की जो मेरे पेट में है, मैं अपने बच्चे को अपना नहीं समझूंगी, आज़ाद करती हूँ दुनिया के काम धंधों से, रिस्क की चीज़ों से आज़ाद। और उन्होंने अपनी बेटी डिवोट कर दी। अब एक जुमला बोलूँगी बड़े शोर से, लोग कहते हैं डोनेशन चाहिए, मैं कहती हूँ डोनेशन नहीं चाहिए, डिवोशन चाहिए। आज हमें दीन के नाम पे डोनेट नहीं करना, डिवोट करना है। सबसे पहले खुद को, अपने आप को डिवोट कीजिए, आपकी सबसे ज़्यादा कदर अल्लाह करेगा, आपकी थोड़ी थोड़ी स्किल्स हैं छोटी छोटी, इतनी बड़ी कर देगा आप खुद शीशे में देखकर शर्माएंगे, ये मैं हूँ किसी नाकाम की बंदी, और अल्लाह इतना कबूल कर लेता। फिर अपनी औलादों को डिवोट कीजिए, जैसे आज माजरत के साथ हमने अपने बच्चों को डिवोट किया हुआ एजुकेशन के नाम पे, दूसरा शहर छोड़ी दूसरे मुल्क भी जाने को तैयार है, डिवोशन है ना, सही बात है। या तो फिर पूरे अल्लाह के जिहाद मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, तो या फिर मुजाहिद फी दुनिया, जो काम कीजिए खूब कीजिए। आज अगर हम आ भी जाते हैं अल्लाह के रास्तों में तो हमारी औलादें क्वेश्चन मार्क बनी हमारा रास्ता रोक रही होती हैं। और फिर उसके बाद जब हम और हमारी औलादें अल्लाह के रास्ते में डिवोट हो गई ना, तो फिर कौन छुपा के रखे जेब में क्या है और पर्स में क्या और बैंक में क्या और लॉकर में क्या, मैं भी तेरी तू भी मेरा। शादी हो जाती है तो मियाँ बीवी के पैसे को फ़र्क रहते हैं, अच्छा ताल्लुक हो तो कुछ छुपाता, यहाँ तो चेकबुक पे साइन भी एक ही जगह होंगे, जॉइंट अकाउंट तो जानते हैं ना। देखिए हमारे यहाँ मिस्टर एंड मिसिस का जॉइंट अकाउंट होता है ना, यहाँ एक जुमला लिख लें, ये दोनों क्रिएशन है, मोमिन का जॉइंट अकाउंट अल्लाह के साथ होता है, एक ही अकाउंट होता है मोमिन का भी और अल्लाह का भी। जो पैसे उसमें डलते हैं, अल्लाह जी जितनी मुझे ज़रूरत है मैं लूँगी, और जो मेरी ज़रूरत से ऊपर है, यसअलूनक माज़ा युन्फिकून कल कुल अफ, बाकी अल्लाह तेरे रस्ते। पहले तुझे ज़रूरत पड़ गई तो तेरा, पहले मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मेरा। अभी तेरे रस्ते में ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, इन द मीन वेल इट्स माइन। जिस दिन तेरे रस्ते में ज़रूरत पड़ेगी सब बेच बाज के तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। ये है जॉइंट अकाउंट। तू बचा बचा के न रख किसे के तेरा आईना वो आईना। तू अपने आप को बचा के रखता है रब से। हम अपनी जिंदगियों के आईनों को बचाएंगे, कब्र में जाएंगे, हमारी मिट्टी, हमारी हमारे सोने चांदी से हमारी कब्रें भी बना दी जाए ना तो भी सोना चांदी बच जाएगा। ज़मीन के इतने टुकड़ों में हमारी कब्र कितनी को बड़ी बनेगी। और फिर अल्लाह वसूल कर लेता है किसी न किसी तरह से। तो इससे पहले कि ज़बरदस्ती लिया जाए, खुद दे दीजिए, आ जाइए इससे पहले कि आपको बुलाया जाए। बुखल निकालेंगे, उम्मत के पौधे पे बहार आएगी। साहब अमीर, हमें बस इतना ही फ़र्क है कि उनकी कोठियाँ बंगले फ्लैट्स नहीं थे, बुखल नहीं था, जो होता था सामने दिखता था। उमर को देख लीजिए, अबू बकर को देख लीजिए, उस्मान को देख लीजिए, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ को दे लीजिए, वो तो सब ले लेके फिरते थे कि अल्लाह कबूल कब करेगा, वक्त ही नहीं आ रहा। और हम कहते हैं हाय वक्त आ गया तो जानना पड़ जाए। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें बुखल से निकाल दे। और दूसरी जो बात है इस बारे में, बहुत अहम पारे का, में उम्मत का इत्तेहाद, मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक, वो दौलत है, वो कीमती चीज़ है कि जो दुश्मनों के दिलों में मुसलमानों का रोब डाल देता है। और जब ये ख़त्म हो जाता है ना तो खसो खाशाक की तरह हमारी हवा उखड़ जाती है। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें जोड़ दे, अपने नामों पे मरने की बजाय अल्लाह के नाम पे मरने वाले बन जाए। जिसको दीन प्यारा है और उसको अगर एक रास्ता मिल गया ना तो बस वो उस पर चलता जाएगा, ये नहीं देखेगा या पूछेगा कि मैं कब कहाँ किधर हूँ। और जितना ज़्यादा आपका दिल अल्लाह से जुड़ेगा, अल्लाह के बंदों से भी जुड़ेगा। किसी से प्यार होता है ना, भाई बहन, तो उनके बच्चे भी प्यारे लगते हैं, अपनों के अपने भी अच्छे लगते हैं। जब अल्लाह से जुड़ेंगे ना तो फिर अल्लाह के बंदों से भी जुड़ेंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे ये किस जमात और किस गिरोह का बंदा है, ये किस मसलक का बंदा है, बस आप ये देखें हक बात है कि नहीं है। चलिए दुआ करते हैं अपने लिए। क्या दुआ करेंगे? रब्बना वला तो हम मिलना माला तो अकतलना भी वाफना। ए अल्लाह, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी ताकत नहीं हम में, और हमें माफ़ कर दे। ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा पे कोई ऐसा सदमा ना डाल कि हमारी और चीखें निकल जाए, पहले ही बहुत सदमे पड़े हुए हैं। दुआ मांगिए अपने लिए। और अब आगे है चौथा पारा। अल्लाह अकबर, चौथी सीढ़ी पे पहुंच गए आप। लन तनालुल बिर हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ नेकी भलाई को पा ही नहीं सकते जब तक अपनी मन पसंद चीज़ अपने रब को ना दे दो। पिछले पारे में क्या था? बुखल, माल का खर्च, खर्च करने में जान निकलती है। इस पारे में पहली आयत में बता दिया कि अल्लाह को मन पसंद चीज़ें दोगे तो अल्लाह को यकीन आएगा कि तुम्हें अल्लाह से प्यार है। हमेशा ऐसा नहीं होता, और सारा कुछ भी नहीं है, मेन कुछ ना कुछ। और साथ ही इस पारे के शुरू में ही आयत आ जाती है सूरत आले इमरान में, कुन तुम खैर उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम हो वो बेहतरीन गिरोह जो लोगों की हिदायत के लिए निकाला गया। तुम लोगों को मारूफ का हुक्म देते हो और मुनकर से रोकते हो, और तुम खुद भी अल्लाह पर ईमान लाते हो। फिर इस पारे में इस रास्ते की रुकावटों में से एक रुकावट है गुस्सा। वल काज़िमीन अल गैस, गुस्से पे काबू पाने वाले। आज उम्मत मुस्लिमा में गुस्सा बहुत है, शायद नफरतों में पल रहे हैं, इसलिए हर एक तो आपका नाम बनाने पे तैयार है। तो लिहाजा गुस्से पे भी काबू पाना है। यहाँ बैठे बैठे आप जरा सोचिए, आपको कितना गुस्सा आता है? याद रखिएगा, गुस्सा आना चाहिए, बट खिलाफ हक चीज़ों पे। गुस्से का इजहार कीजिए, मगर बातिल को मिटाने के लिए। गुस्सा तो आपकी ताकत है, जैसे शिकारी जानवर होता है ना, अगर आप उसको टेम कर लें तो वो आपकी मदद करता है, शिकार पकड़ के लाता है। और अगर आप गुस्से को टेम ना करें ना तो आपको खा लेगा। इस पे पूरी वर्कशॉप्स हैं, ब्यूटीफाई योर सेल्फ के नाम पे अटलांटा से हुआ था, फिर इसी तरह एंगर मैनेजमेंट पे फ़ायदा उठाएं आप इन चीज़ों से, बहुत कुछ है उसमें। और DQ10 2010 का दौरे कुरान, उसका चौथा पारा भी गुस्से पे है, बहुत डिटेल्स हैं उसमें, डिटेल्स आप वहाँ से पढ़ें। आपके मेरे लिए इस बारे में क्या है उम्मत खैर, और अमली तौर पर एक सबक सिखाया गया इस पूरे पारे में, ग़ज़वे उहद की झलकियाँ। एक छोटी सी बात लिख लें, जितनी बातें अभी तक की हैं ना उसमें ऐड ऑन कीजिए, अभी तक इस पे बात नहीं की, और वो है इत्तबाए रसूल। मुसलमान अल्लाह से भी जुड़ें, कुरान से भी जुड़ें, जो भी अभी तक बातें की उसमें एक चीज़ लाजिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। ज़िंदगी के हर पहलू में तो कामयाबी आपका रास्ता देखेगी इंशाअल्लाह ताला। ग़ज़वे उहद में एक हल्की सी गलती हुई और मुसलमान बहुत बड़ी चोट खाते हैं, नबी सल्लम की बात भूल गई, ये कह लीजिए सहाबा की इज्तिहादी गलती थी, जिसका नुकसान ना सिर्फ ये कि 70 सहाबा के शहीद होने, बल्कि नबी सल्लम के भी ज़ख्मी होने और आपके अजुर्दा होने की सूरत में निकला। आज आपको मुझे बता दिया, तुम मुसलमान एक उम्मत होकर कामयाब होना चाहते हो ना, तो फिर तुम्हें अपने आप को नबी सल्लम के फुट स्टेप पे चलाना होगा। सवाल कीजिए खुद से शौरी तौर पे, कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं नबी सल्लम के तरीके पे चलूँ। नबी सल्लम का तरीका खुशी में, गम में, खाने में, पीने में, जीने में, पढ़ने पे, बोलने पे, लिखने पे, जब तक ये नहीं आएगा आपकी मेरी ज़िंदगी में, याद रखिए आप देखेंगे कामयाबी नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह शऊर के साथ हमने अपने आप को नबी के तरीक़ों पे लेके चलना है। और साथ ही साथ इस बारे से ये मिलता है कि मुसलमानों को अपनी तारीख से सबक सीखना है। कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, जो लोग अपनी तारीख यानी हिस्ट्री से सबक नहीं लेते फिर वो लोगों के लिए इबरत बन जाते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए। फिर इसी तरह इस बारे में मुसलमानों के अहले किताब के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, बहुत डिटेल से उस पर बात है। आपके मेरे लिए इस बारे से क्या चीज़ है, दाई बनी है। आप जब छोटे थे, हम सब के साथ ये हुआ, लोग अक्सर एक सवाल करते थे, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, करते थे, और अमूमन हम उसका जवाब क्या देते थे, डॉक्टर, और सारे बाद में मरीज बन गए, गोडों में दर्द हैं, गुड्डियों में दर्द हैं, हड्डियों में दर्द हैं, कमर टूट गई, हाँ पूरा हुआ लेकिन उलट रंग में, ऐसे ठीक है आंटी जी, सही कहना, आपने तो नहीं था डॉक्टर बनना। आज से अपने बच्चों को, ये जो गोदों में नस्ल है ना आपके, आप में जितनी मदर वेद खेड्स हैं यहाँ भी और घरों में भी छोड़ के आई हैं, आज से एक नियत करें, और यही दुआ करते हैं हम, अपने बच्चों को एक जुमला सिखाइए, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, मामा मैं दाई बनूंगा। एक उस्ताद थे तो अपनी क्लास में यंग अर्ली टीनेजर बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई कह रहा था डॉक्टर, कोई कह रहा था साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, सब बच्चों के बाद एक बच्चे पे नज़र रुक गई उस्ताद की, बड़ा मुतहम्मिल आजिज बच्चा। उस्ताद ने पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहने लगा, टीचर मैं बड़ा होके सहाबी बनूंगा। सहाबी बनोगे क्यों? कहा इसलिए कि मेरी मामा मुझे हर रात एक सहाबी की कहानी सुनाती हैं, और सहाबी बड़े अच्छे होते हैं। तो आज से अपने बच्चों के ख्वाब बदलिए, ये माँ का दूध और माँ की लोरियाँ, और फिर माँ की तरबियत है जो बच्चों को सहाबी और दाई दीन बनने का ख्वाब दिखाती है। दुआ मांगे, दिल से मांगिए अपने बच्चों के लिए। अल्लाह हमारे बच्चों को अपने रास्ते में खपा दे और उनको ये शौक लगा दे। और उसके बाद अगला पारा पांचवा, वल मुहसनातु, मुहसनात का तस्करा। क्या पता चला कि मुसलमान औरतें किला बंद होती हैं, उबाशनी होती, पाक दामन होती हैं। इस बारे में सूरत निसा का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है। औरतों के हकूक इसमें हैं। जिन औरतों को अपने हकूक चाहिए उनको पहले सूरत निसा पढ़ाइए तर्जमे और तफसीर के साथ। पूरे कुरान में रिजाल नाम की कोई सूरत नहीं है, मर्द। औरतों को अल्लाह ने हक ज़्यादा दिए। और एक नॉन मुस्लिम कहता है कि अगर मेरा यकीन ना होता ना इस बात पर कि कुरान मोहम्मद ने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि ये भी दुरुस्त नहीं, तो मैं ज़रूर कहता कि इस कुरान को लिखने वाली एक औरत है। ये कुरान इतना औरतों को हकूक देता है। लेकिन आज औरतों को हमने चूँकि कुरान सिखाया ही नहीं, तो वो हाथों में बैनर्स पकड़ कर हकूक मांगने में निकलें और शर्मसार हो गई, रुसवा हो गई। दुआ कीजिए हमारी सारी बहनों को कुरान आ जाए, समझने वाले आ जाए। और फिर इस में पांचवे पारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का बहुत जिक्र है, इत्तबाए रसूल। और नमाजें इब्तदा में पांच थी, 50 थी, फिर पांच हुई, इसका जिक्र भी है। कैसे नमाजें थोड़ी थोड़ी करके दी गई। और ये भी इसी पारे में कि मुनाफिक को सबसे बोझल तो लगती है तो वो नमाज लगती है। और फिर इस बारे में अहले किताब को इस्लाम की दावत देने का तरीका, कॉमन ग्राउंड पे बात करो, और मुनाफिकीन के साथ क्या ताल्लुकात है और जिहाद कब कहाँ होगा। फिर इसी तरह बनी इस्माइल और बनी इसराइल से मुजादिला है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और पिछले नबियों की उम्मत का आपस में मुबाहला कह लीजिए। और ख़ास तौर पर सूरह निसा में इस्लाम का निज़ाम अदल है। हम कब पढ़ेंगे ये कुरान? मेरा एक सवाल है अपनी हर उस प्यारी बहन के नाम जिसने अभी तक फातिहा से नास तक का कुरान सीने में नहीं डाला। कब और कब और कितना जिएंगे? जन्नत में भी नहीं मिलेगा ये मौका, कब्र में भी नहीं होगा, बहुत सोएंगे वहाँ जाके। आज नियत कीजिए, कमिटमेंट कर जाइए, चले भी गए अल्लाह के पास तो इंशाल्लाह ये नाम लिस्टों में पहुँच जाएगा। अगर अभी तक कुरान को पूरे समझ के पढ़ने का मौका नहीं मिला, फिर इसके बाद आप देखिए कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की दुआ करें। पारे में मौजू खयानत क्यों है? उम्मतें खयानत करती हैं। जब अल्लाह उनको एक काम देता है और वो काम ना करें तो भी खयानत है। और बहुत सारे लोग जो माली खयानतें भी करते हैं, वक्त की खयानत भी करते हैं। और इस नाते से अगर आप देखें तो हमने तो अल्लाह की नेमतों को पाकर उन नेमतों को अल्लाह के रास्ते में लगाया ही नहीं। तो एक दुआ करें अपने लिए, मैं भी और आप भी, अल्लाह खाइन होने से बचा। देखिए जिम्मेदारी मिली पूरी नहीं की, खयानत है। वक्त लगाना था पूरा, थोड़ा लगाया, खयानत है। माल मिला किसी एक ख़ास मकसद के लिए, थोड़ा किया बाकी ज़ाया किया, खयानत है। मैं तो कहती हूँ मस्जिद में जाएं और एक टिशू की जगह दो टिशू पेपर पकड़ लें, ये भी खयानत है। डिस्पोजेबल ग्लास एक के नीचे दूसरा डाल दें ताकि आपके हाथ ना जलें, ये भी खयानत है। कुरान आपको इतना सेंसिटिव और इतना हसास बना देता है, आप अपने चौकीदार खुद बन जाते हैं। लोगों के साथ जो कुछ क़यामत के दिन जाके होना है वो आपके साथ दुनिया में होने लगता है। तो चलिए दुआ करते हैं, अल्लाह ज़ाहरी बातनी खयानतों से बचा। क़यामत के दिन खयानत का माल कंधों पे उठाया होगा लोगों ने, कभी गाय भैंस बकरी ऊँट की सूरत में, और चिल्ला रहे होंगे वो जानवर और ये बंदा बोझ से दबा होगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी निगाहों की खयानत को भी माफ़ कर दे। दुआ मांगते हैं अपने लिए। फिर अगला पारा है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला की मोहब्बत यानी अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद की बात हो रही है। आप देखिए कि आपको कोई कहता है अल्लाह आपसे प्यार करता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, अल्लाह मुझसे प्यार करता है। आप कहते हैं कि एक सहाबी का नाम लेकर अल्लाह ने कहा कि नबी सल्लम से कहा उसे को सूरह काफिरून पढ़े, एक सूरत पढ़ी तो वो रो पड़े हजरत काब, अल्लाह के नबी अल्लाह ने मेरा नाम लिया। जी आपका नाम लिया, और जिसको अल्लाह से प्यार नहीं, आप कहते हैं ला युहिब्बुल्लाहुल जार, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, वो कहता हु केयर्स, आई डोंट माइंड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि अल्लाह मुझसे प्यार करे, क्योंकि मुझे जो अल्लाह से प्यार नहीं। तो पहला सवाल तो हम सब अपने आप से करते हैं, ये मेरे लिए कितना अहम है कि अल्लाह मुझसे प्यार करे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इस पारे का जो बुनियादी मौजू है वो जाहिलियत है। अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या ये जाहिलियत का तरीका चाहते हैं? और जाहिलियत क्या है? मा कबल अल इस्लाम, इस्लाम से हटके हर चीज़ जाहिलियत है। इस्लाम से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, आज लोग बेटी को देखकर पेट में बेटी है अबॉर्शन करा देते हैं, और इसी तरह फिर और बेटियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, इसी तरह और जाहिलियत के तरीके हम खुद ढूंढ सकते हैं। हमें इतना पता कि इस्लाम इज़ मॉडर्निज्म। आज लोग कहते हैं मॉडर्न कौन है, अमूमन जहन में आता है इस्लाम पे अमल ना करके मॉडर्न बनेंगे, हालांकि इस्लाम इसका ऑपोजिट नक्शा देता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस बारे में खुशखबरी है ईमान वालों को, आयत 175 सूरत निसा, फ़मल्लज़ीन आमनू बिल्लाही, बस वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, आप भी कहें मैं लाती हूँ, लाएंगे ना, लाए मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा काम अब ज़्यादा करना है आज, वा तस्समू बिही, उसको मजबूती से थाम लें। सवाल पैदा होता है अल्लाह को कैसे थामे, को अल्लाह मेरे हाथ में, देखिए ना अब ये फ़ोन है तो मैं इसको पकड़ लूँ, ये किताब है इसको पकड़ लूँ, माइक को पकड़ लूँ, अल्लाह को कैसे पकड़ूँ? अल्लाह के दीन को पकड़ने से। फ़सयुद खिलुहुम फ़ी रहमत मिन्हु, अल्लाह ऐसे लोगों को अनकरीब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, व फ़दलिन और फ़ज़ल करेगा, व यहदीहिम इलैहि सिरात मुस्तकीम, और उनको अपनी तरफ रास्ता दिखाएगा। ये आयत नोट कर लें, 175, आज के मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल का हल है इसमें, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हम पे अपना फ़ज़ल भी करे, अपनी रहमत भी करे, सीधा रास्ता भी दे। इस बारे में अहले किताब और ख़ास तौर पे ईसाइयों से मुजादले की भी बात है, शरीयत की तकमील भी है। छठा वजह, सूरत माईदा शुरू होती है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल्लाह से दुआ कीजिए पूरी शरीयत लेने वाले बन जाए। और फिर कानून विरासत भी है, किस किस को विरासत के मसाइल आते हैं, हाथ खड़ा करें। विरासत के मसाइल हर उस बंदे को आने चाहिए जिसके पास माल है। माल नहीं है ना तो मत सीखें, डोंट वरी, मुश्किल लगते हैं। अगर आपके थोड़ा सा भी माल है तो आज से नियत कीजिए कि हमने विरासत के मसाइल सीखने हैं, इसको इल्मुल फराइज कहते हैं। फिर इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसका यकीन रखिए। और इसी तरह ईसाइयों और यहूद को नसीहत की गई है कि मुसलमानों के साथ राह जाते की बातें ना करो। अल्लाह ने ये दीन अपनी मर्ज़ी से नबी सल्लम को दिया है, नबी सल्लम अपनी मर्ज़ी से नहीं लेकर आए। और ख़ास तौर पे भी सूरत मायदा में सज़ाओं का तस्करा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सूरत है, अहकामात से भरी हुई, और फिर इसमें मुसलमानों को नसीहत भी की गई है। आप और मैं एक दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर से जाहिलियत निकाल दे, हर वो तरीका जो जाहिलियत का तरीका है अल्लाह ताला हमसे निकाल ले। इसके बाद देखिए पारा नंबर 7, व इज़ा समीउ मा उन्ज़िला, और जब वो सुनते हैं वो चीज़ जो नाजिल हुई रसूल पर अल्लाह की तरफ से, और वो क्या थी सबको पता, कुरान। हबशा के कुछ लोग नबी सल्लम के पास आए और कुरान सुनकर रो पड़े। मैं आपसे एक सवाल करूं, कब आखिरी बार, हम कब आखिरी बार रोए? आप कहेंगे आने से पहले रो के आई हूँ, हाँ कपड़े जो इस्त्री कर रही थी वो जल गया जोड़ा, रोते तो हम भी बहुत हैं, एक बात के लिए रोना है और वो क्या, कुरान सुन के रोए। देखिए एक जुमला बोल देती हूँ, हिदायत खोया हुआ बच्चा। आप कभी पाकिस्तान गए हों बहुत साल बाद, और आजकल तो वैसे ही बहुत सारे तरीके हैं ना कम्युनिकेशन के, आज से 10-15 साल पहले जब सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती थी, और फिर आप आ गए और इधर से 10 साल जा ही ना सके, फिर 10 साल बाद गए और एयरपोर्ट पे क्या हुआ, उधर वाले भी रो रहे थे इधर वाले रो रहे थे, जिस तरह हम बहुत अरसे के बाद अपने किसी खोए हुए किसी पुराने प्यारे को मिलते हैं तो रोते हैं ना, इसी तरह कुरान सुनकर मोमिन भी रोता है, क्योंकि मोमिन की गुमगुश्ता मिरास है कुरान। रोया करें, शक्ल बना ले रोने वाली, दिल पे असर करेगा तो रोएंगे ना। लोग कहते सैड सॉन्ग सुन के रोएं, तो फिर वैसे क्या फ़ायदा, रोने के लिए भी कुछ करना है? सैड मूवीज़ देखो तो ज़िंदगी की मूवीज़ ही बहुत है रोने धोने के लिए। कुरान सुन के रोएं। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि इस मौजू पारे का जो मौजू है ना, सच है। कूनुमा सादिकीन, सच्चों का साथ दीजिए। आज के दौर में सच और झूठ का फ़र्क बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते। दुआ कर लें आज, बस एक दुआ करके आगे चलें, आए अल्लाह सच और झूठ का फ़र्क बता। अल्लाह मारिनल हक हक्कम वरज़ुक न इत्तबाहु, अल्लाह मारिनल बातिल बातिलम वरज़ुक न इज्तनाबहु। अल्लाह हक को हक करके भी दिखा, फिर उसका साथ देने वाला भी बना, और बातिल को बातिल करने वाला और फिर उससे रुकने वाला भी बना। इंशाल्लाह ज़िंदगी में सच आएगा। और इस बारे में बहुत सारे शरीयत के अहकाम हैं। तौहीद का पैगाम है, सूरत अलनाम शुरू होती है, जो खूबसूरत सूरत है, फरिश्तों के झुरमट में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत थी। फिर इसमें यह भी बताया गया कि इस्लाम में रहबानियत ममनू है, शरीयत के अहकाम भी, अम्बिया की दावत तौहीद भी है, और हराम और हलाल का फ़र्क बहुत बताया गया है। हराम की ममानियत भी है और शिर्क का रद्द भी है। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, सूरत अलनाम की आयत 16 आपकी स्लाइड में लिखी हुई है, आज इस पे चंद सेकंड गौर करें। मई युसरफन हो यौम इज़िन फ़कद रहमहु हो, और अगर कोई बचा लिया गया उस दिन तो गोया कि उस पर रहम कर दिया गया। वज़ालिकल फौज़ुल मुबीन, तो यही है बहुत बड़ी कामयाबी। असल गोल ये बनाए, क़यामत के दिन के अज़ाब से बचा कर अल्लाह की रहमत में अल्लाह हमें ले आए। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी रहमतों के साए में ले ले। है कुछ नहीं, पल्ले नहीं कुछ नहीं, सिर्फ तेरी रहमत चाहिए। तेरी रहमत की चादर मेरे गुनाहों को छुपा ले, गुनाहों वाले दामन पे अपनी रहमत की चादर डाल दे। इंशाअल्लाह ताला दुआ मांगते हैं अपनी अपने लिए अल्लाह की रहमत की। बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह की रहमत। बस ये दुआ करें कि आमद के दिन अल्लाह अपना रहम कर देना इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आठवां पारा, वलो अन्ना, और अगरचे हम नाजिल कर दें इन पे फरिश्ते भी, मुर्दे भी उठकर इनसे कब्रों से निकल कर बातें करें तो भी नहीं मानेंगे। इस पारे का मौजू है अना। जिनको नहीं मानना होता ना, वो नहीं मानते, कर लें जो करना है। और कौन नहीं मानता? अना परस्त, सेल्फ वर्शिपर, अपने आप को पूजने वाला। कुछ लोगों के लिए कोई नया ही कोई ज़माना आएगा जिसमें वो बैठ कर अल्लाह की बात सीखेंगे, सिखाएंगे। उनको सबके साथ नहीं सीखना होता, वो कॉमन ग्राउंड पे बात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं नहीं इसमें चोट पड़ती है। किस तरीके से अना बंदे के हिदायत के रास्ते की रुकावट बन जाती है, ये इस बारे में आप पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर ज़ुख़रुफ़ल क़ौली ग़ुरूरा, मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें। आज हर बंदा मीठी बातें करके ईमान के सौदे करने को तैयार है। फिर इसी तरह इस बारे में एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है, किसकी? आदम और हव्वा की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया और अगर तुम्हें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। दुआ करें, कोई गुनाह याद करें अपना जो भूल ही नहीं रहा, फिर ये दुआ करें कि अल्लाह हमने ये गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म और सितम किए हैं तो हम पे रहम कर दें। कोई गुनाह याद करें और दुआ करें कि अल्लाह उसको दुनिया के सामने ना लाना, रुसवाई से बचाना। फिर इसमें कुरैश की बिदात का बहुत जिक्र है। मनमाने तरीके से शरीयत बनाए बैठे थे, एक मुकाबले पे अल्लाह का दीन था तो दूसरी तरफ उनका खुद साख्ता दीन था, खुद साख्ता हलाल हराम के नुस्खे, जैसे आज हमारी उम्मत में भी बहुत से बने हुए। इस दरवाजे से गुजर जाओ तो बहिश्ती, ये कर लो तो जन्नती, और ये और वो। आज याद रखिए, इस कुरान को आम ना करना जुर्म अजीम है। आज भी देखिए हमारी उम्मत भी तो यही करती है, रबी अव्वल आएगा तो मिलाद कराएंगे, रजब आएगा तो गुंडे कराएंगे, मिराज शरीफ के किस्से पढ़ेंगे, रमज़ान आएगा तो तरावियां पढ़ेंगे, सदके करेंगे, उमरे पे जाएंगे, चंद गिनी चुनी नेकियां, शाबान आएगा तो 15 शाबान की रात को जागेंगे, हलवा मांडा पकाएंगे, कब्रों पे जाएंगे, बस पक्के, फिर सारे काम अपनी मर्ज़ी के करो। ऐसा नहीं होता। इस्लाम छोटे छोटे पैचिस का नाम नहीं है, पूरा दीन दावते इस्लाम और मुशरिकीन को वईद है, और सबसे बढ़ के इबलीस से बचने की ताकीद है। और इसी बारे में फिर पहली दफ़ा लिबास और हिजाब के अहकाम आते हैं। लिबास का बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह की बात के मानने और ना मानने से। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए इन सारी बातों को आसान कर दे। अगला पारा है पारा नंबर 9। अगर आप थोड़ा सा इल्मी बातें कर रहे होते ना, तो मैं आपको कहती, अभी तक आप मदनी सूरतें पढ़ रहे हैं, बीच में मक्की आ रही है, फिर मदनी आ रही है, तवील सूरतें आपने पढ़ ली। यानी आप कह लीजिए कि अल्लाह ने इस कुरान के एक एक पारे में, ये सिर्फ चंद जुमले बोल रही हूँ एक पारे के, और जब आप एक पारे को 15-20 लेसन्स में पढ़ते हैं तो क्या कुछ आपको नहीं मिलता, ये सोचिए इस वक्त। तो नवा पारा जो कालल मलल्लज़ी नस्तकबरू, तकबूर इसका मौजू है। हर दौर के नबी के सामने जुबान खोलने वाले उस दौर के बड़े लोग थे, पैसे वाले, इन लीड्स, इन्फ्लुएंशियल्स। क्यों? क्योंकि अमूमन अंबिया कराम की दावत उनके मुफादात पे चोट डालती थी। लेकिन एक गरीब को क्या लगे सूद हलाल है के हराम, उसकी रेड़ी पे 500 रुपए के टमाटर रखे हुए हैं, सारा दिन लगाकर बेचेगा, रात को पूरा 500 का नोट लेकर घर चला जाएगा, उसको क्या लगे कि सूद क्या और इंटरेस्ट क्या और रिश्वत क्या। ये मसला उनका होता है जिनके पास बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। तो तकब्बुर बहुत बड़ी रुकावट अल्लाह के हुक्म को मानने की। और इसमें हजरत साले, लूत, शुएब, तीन अंबिया कराम की कौमों के तस्करे, नबियों का अल्लाह पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, और कौमों का खूब बदतमीजी करना, ये इसमें आपको दिखता है। सबसे ज्यादा तवील किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। गज़वे बदर का कुछ हिस्सा सूरत अनफाल की सूरत में आप इसमें पढ़ते हैं, और बता दिया पहली ही जंग के मौके पे कि जितना अल्लाह के हुक्मों को मानते जाओगे उतनी कामयाबियां तुम्हारी होंगी, और मैदान जंग से जान छुड़ाते हो तो याद रखो जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अल्लज़ी लहु मुल्कु समावाती वल अर्दी ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। यकीन रखिए, अल्लाह ना चाहे तो मौत नहीं आएगी, और अल्लाह चाहेगा तो जिंदगी आएगी, चाहे आप ना चाहें। बच्चे ने दुनिया में आना है, वो आएगा। इस पूरे पारे को पढ़ने के बाद जो मैंने अपने लिए दुआ करनी है और आपने, वो क्या कि अल्लाह अंदर के किब्र से भी निकाल दे। बतर अल हक की व गिमतिन नास, हक को झुटलाना, अल्लाह की बात कोई आ गई, नहीं मानते, नहीं हमसे नहीं होता, ये तकब्बुर है। और उसके बाद फिर 10वां पारा जिस पे 1/3 ऑफ कुरान पूरा होता है। वालमु अन्नमा, वालमु से पारा शुरू होता है, इल्म लो, जान लो, माले गनीमत की बांट है। और इसमें कैसे खूबसूरत तरीके से जंग के दौरान और जंग के बाद के हालात का तस्कर है, अपनी जगह पढ़ने वाला एक पारा है। आप देखेंगे कि जितनी दफ़ा भी आप इस कुरान को पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपका दिल खोलेगा। तो गज़वाए तबूक का एक तवील हिस्सा 10वें पारे में है। अल्लाह ताला इस पारे में आपको मुझे बताते हैं कि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक कौन लोग होंगे। हम अमूमन कहते हैं ना, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, किन पे करेगा? मोमिन मर्दों और औरतों पे। और ये कौन होते हैं? ईमान वाले कौन होते हैं? जो एक दूसरे के दोस्त होते हैं, दिलों में कदूरते नहीं रखते, नफरत नहीं रखता ईमान वाला। फिर इसी तरह भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। आज अमूमन लोग क्या करते हैं? बुराई के इश्तहार बने होते हैं, बुरी चीज़ें फैला रहे हैं, अच्छी चीज़ों को दबा लो। नमाज कायम करना, ज़कात देना, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना, जो बहुत बड़ा दीमक जो आज भी उम्मत मुस्लिमा में लगा हुआ है वो है दिखावा। दिखावा, रियाकारी दो तरह से होता है, एक तो दुनियावी दिखावा होता है, एक दीनी दिखावा भी होता है, दोनों से रुकना। अबू जहल एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मैदान बदर में गया था कि ज़रा आज मुसलमानों को दिखाते हैं कि हम कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला ने उसी को उसकी मौत की आवाज़ बना दिया और हम सबको बता दिया कि जब मुसलमानों में उम्मते मुहम्मदिया के लोगों में दिखावा आ जाएगा तो उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई सिर्फ लोगों को दिखावे में गुजर जाएगी। लोग क्या कहेंगे आज सोचिए ज़रा। देखिए आप अच्छा पहन सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने लिए, तहदीस नेमत के लिए, अल्लाह की नेमत के इजहार के लिए, सदका जारिया के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए आप अच्छा पहनने के लो दूसरे जले। 5 लाख का जोड़ा तो बंदा अपने लिए नहीं पहनता ना, 1 लाख का मेकअप तो कोई अपने लिए नहीं करा सकता। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ना समझ होगा। वो मेकअप जो सुबह सिंक में गिरेगा 1 लाख रुपए में कराएं, ये दिखावा है। और नेकियों का भी दिखावा होता है, लोगों के सामने नेक बनकर आना। चाहे अल्लाह ने रुख्सतें दी हुई हैं, सिर्फ लोगों के डर से नहीं कर रहे क्योंकि लोग कहते हैं आप नेक हैं, आप दीनदार हैं, ये भी एक बहुत ही अजीब सा दिखावा है। इस पे भी हमने बारे में बात की है। ये सारी तरतीब जो यहाँ मौजूद की है ये दौरे कुरान 2010 की है। हर पारे पे एक पूरा पूरी बुराई, यानी दिखावे दिखावा ऑल अबाउट, और इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। लेकिन इस पारे में माल गनीमत और जंग के अहकाम की बात है। गज़वे बदर में इब्लीस का किरदार है, कैसे सुराका बिन मालिक की सूरत में आया और बाद में ऐन वक्त पे भाग गया। सुलह और जंग के अहकाम बताए गए हैं और ख़ास तौर पे मुसलमानों का अरब मुशरिकीन के ख़िलाफ़ अजीम जंग बरपा जो हुई उसकी बात थी। आपको मुझे इसमें क्या सिखाया गया? मुसलमानों को अमन के लिए तैयार रहना चाहिए। मगफरत और इसके करीम की बिशारत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के वादों पर यकीन करके उसके रास्ते में तन मन धन लगा देते हैं। और ख़ास तौर पर इस बारे में सूरत तौबा है और उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं कही, तो क्या आपके मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं? और ये इस बात की दलील है कि हम दीन में कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। और इसी तरह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को मानना। आप देखिए कि तकरीबन हमने 1 घंटा 10 मिनट टोटल मैंने आपसे लिए हैं और हमने 10 पारों का खुलासा किया। आपको कुछ फ़ायदा हुआ इससे? क्या ये बहुत फास्ट सफ़र था और आप कुछ नहीं ले सके या कुछ मिला? आप लोगों को इस ख़जाने की अभी सिर्फ ऊपर की चाबियों के दंदाने मिले हैं। सारी खैर, हिदायत, खुशी और सुकून के ख़जाने इस कुरान में। अल्लाह ताला आपको मुझे लेकर दे। जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।